रजत को कीर्ति से दूर करने के लिए अगर मुझे दिल्ली भी जाना पड़ेगा ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते हुए आस्तिक गुस्से में गाड़ी में बैठता है और गाड़ी ड्राइव करके खुद ही वहां से निकल जाता है। सक्षम और पृथ्वी हैरान हो जाते हैं। पृथ्वी कहता है, सक्षम तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? सक्षम हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, तुम अरुणिमा और बाकी सबकी फिक्र छोड़ दो, उन्हें मैं देख लूंगा। मैं आजकल में ही अरुणिमा को अपने फार्म हाउस में शिफ्ट करवा देता हूँ और तुम जल्द से जल्द पता करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो छूट रही है। एक तरफ से राजा साहब का पहलू है और दूसरी तरफ से अरुणिमा का, और दोनों ही पहलू एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पृथ्वी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द इस बात की तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां शुरू हुआ था। मैं कल मुंबई के लिए निकल रहा हूं, क्योंकि इस बात की शुरुआत मुंबई से ही हुई थी, हमारा पुराना घर जहां हम रहते थे। सक्षम भी हाँ में सिर हिलाता है। अब दोनों ने ठान लिया था कि इस बात को सामने लाकर रहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आस्तिक अरुणिमा और उसके परिवार से इतनी नफरत करता है। आखिरकार सबको सच जानने का हक है। आस्तिक वापस महल आ गया था, लेकिन महल आने के बाद उसने सबसे बातें करना कम कर दिया था। प्रणाली इस वक्त यहीं पर थी और जानवी भी यहीं पर रह रही थी। ताई सबके साथ आस्तिक को देख रही थी, लेकिन आस्तिक ने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कीर्ति वापस रजत के घर चली गई थी। कीर्ति और रजत के रिश्ते सुधर रहे थे, पर आस्तिक पूरी कोशिश कर रहा था रजत का ट्रांसफर करवाने की। वो चाहता था कि रजत यहां से चला जाए, इतनी दूर कि वापस कभी उसे परेशान करने के लिए आए ही ना। इसके लिए आस्तिक को बहुत ऊपर तक जाना पड़ा था। एक आर्मी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना कोई छोटी बात नहीं थी, और वो भी तब जब आस्तिक खुद गुनाहों के कटघरे में खड़ा है। पैसे से आस्तिक सिर्फ सिंघल पर अपना हक जमा सकता है, पूरी दुनिया पर नहीं, और एक ऑफिसर के लिए तो कभी भी नहीं। आस्तिक का पैसा धरा का धरा रह गया था, उसे सिर्फ अपनी पहुंच से इस मामले को हैंडल करना था। पूरे एक महीना लगा था आस्तिक को रजत के ट्रांसफर के लिए बात करने में। आस्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है तो उसकी नज़र सब पर जाती है। सब परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे और सबके चेहरे पर इस समय बहुत ज्यादा ही घबराहट थी। प्रणाली भी परेशान हो रही थी कि तभी आस्तिक उनके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ प्रणाली, सब इतनों परेशान क्यों हैं? प्रणाली जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, भाई वो बात ऐसी है ना कि रजत को वापस शिप बुला लिया गया है और उसे आज ही निकलना है। आस्तिक ने बेफिक्री के साथ कहा, हाँ तो क्या हुआ, ये उसका काम है, अपनी ड्यूटी पर, आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। पर जानवी ने कहा, भाई साहब बात ये नहीं है कि रजत अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर रहा है, दरअसल बात ऐसी है कि अब कीर्ति वहां पर अकेली होगी और हमें आज ही पता चला है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। प्रीति की प्रेग्नेंसी का सुनकर आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने तो ये सोचा भी नहीं था। उसने तो सोचा कि रजत को कीर्ति से अलग कर देगा। रजत वैसे भी अपने शिप पर जाने वाला है और वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी ड्यूटी बदलती रहे, जिससे वो सालों साल सभी वापस लौट ही ना पाए। पर कीर्ति की प्रेग्नेंसी ने आस्तिक को हिलाकर रख दिया था। आस्तिक हैरानी से कहता है, क्या कीर्ति प्रेग्नेंट है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आस्तिक किस तरीके से चौंकने पर ताई कहती हैं, क्यों नहीं हो सकता है, पति पत्नी हैं दोनों और शादी को 4-5 महीने भी हो गए हैं, बिल्कुल हो सकता है। पर हम परेशान इस बात के लिए नहीं है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है, हम तो इस बात के लिए परेशान है कि अब वहां उसकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि रजत तो आज ही अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा है। रजत की ड्यूटी भी ऐसी जगह है जहां पर वो कीर्ति को लेकर नहीं जा सकता है। आस्तिक वैसे तो परेशान था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, कीर्ति कौन सा बिना परिवार के है, हम सब है ना उसका परिवार, वो हमारे साथ रहेगी। मैं अभी ड्राइवर को भेजता हूँ, वो कीर्ति को यहाँ लेकर आ जाएंगे। सिर्फ रजत अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, हम सब यहीं पर हैं, हम सब कीर्ति का ख्याल रखेंगे। वहीं रजत के घर पर कीर्ति और रजत एक दूसरे के गले लगे हुए खड़े थे। रजत इस वक्त अपनी नेवी की यूनिफॉर्म में था। रजत कीर्ति को खुद से अलग करता है और उसके आंसू पूछते हुए कहता है, कीर्ति ऐसे रोते हुए विदा करोगी मुझे? कीर्ति के आंसू और तेज हो गए थे तो रजत कीर्ति का सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, कीर्ति ये तो तुम्हें पहले से ही पता है कि मेरा काम क्या है, एक दिन तो मुझे ड्यूटी करनी ही थी ना, हम आर्मी वालों का काम ऐसा ही होता है, हमारा वक्त हमारा अपना नहीं होता है, देश का होता है। कीर्ति रोते हुए रजत से अलग होती है, लेकिन फिर वो अपने आंसू साफ करती है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए हाँ में सिर हिलाती है। रजत कीर्ति के माथे को चूमता है और कहता है, मैं ज्योति से बात कर लूंगा, वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाएगी। कीर्ति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं उससे बात मत कीजिएगा, वो बार बार यहाँ आएगी तो इसमें उसकी पढ़ाई खराब होगी, मैं ठीक हूँ। कीर्ति की बात सुनकर रजत कहता है, नहीं कीर्ति तुम अकेले कैसे रहोगी, वैसे अब तुम अकेली थोड़ी ना हो, तुम्हारे साथ मेरा बच्चा भी तो है। अजीब बात है ना कीर्ति, कल ही हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और आज ही मुझे ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है। उसके बाद रजत कुछ सोचकर कहता है, क्या तुम राजा साहब के पास? नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपके और भाई के बीच जो कुछ भी है, आपको लगता है उसके बाद वो लोग मुझसे प्यार से बात करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इस आवाज से सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है, जहां पर इस समय पृथ्वी और जानवी खड़े थे। उन दोनों को देखकर रजत और कीर्ति हैरान हो जाते हैं। तो पृथ्वी और जानवी अंदर आते हुए कहते हैं, कीर्ति, हम तुम्हें लेने आए हैं, भाई ने खुद तुम्हें घर बुलाया है।